मुलाकात। मैं तुम्हें फिर मिलूंगी काव्य संग्रह की कुछ कविताओं को संग्रहित करके शीर्षक दिया है मुलाकात। अमृता बीमार थी, बहुत बीमार। अपने नगमों, अपनी कविताओं के माध्यम से वो कभी अपनी माँ को याद करती, कभी सारे बंधनों के परे जा कृष्ण से, गणेश से, साईं से मिलती, कभी बस अपने प्रेमी से मुलाकात के लिए किसी भी सीमा के पार जाने की बात करती। सुनते हैं शीर्षक मुलाकात के अंतर्गत समाहित मैं तुम्हें फिर मिलूंगी की कुछ कविताएं गाथा ऐप पे पल्लवी गर्ग की आवाज में। जब अपने इर्द गिर्द मृत्यु मंडराती दिखती है, तब वो भय, वो डर कैसा होता है? इस भाव का एक बेहद सजीव चित्रण इस कविता में किया है अमृता ने। काल का पक्षी। मारी, काल का पक्षी उड़ रहा, वह कुछ सुनता न कहता। ऊंचे कलश बहुत है मेरी माँ, वह किसी कलश पर नहीं बैठता। दिन का सूरज ढूंढने निकलता, जाने किस दिशा में वह रहता। कहाँ से आता, कहाँ वो जाता, कोई दिन चढ़ता ना उतरता। यज्ञ और हवन चूरी करते, वह तिल ना होठों को लगाता। काल का पक्षी उड़ रहा है मेरी माँ, वह कुछ सुनता ना कहता। माँ ओ, आज अपनी आंखों से देखा, वह मन के वन से गुजरता। जिस पल में इश्क बोराए, उस पल का चोगा चुकता। ओ माँ, काल का पक्षी उड़ रहा है, काल का पक्षी उड़ रहा है। मरुस्थल की एक शाम और उस शाम के विचित्र अनुभवों को समेटा है अमृता ने इस कविता में। मन किस प्रकार मनमानी दिशाओं में भागता रहता है और अपने आप से दूर होता रहता है, फिर किस प्रकार कोई रोशनी की किरण बनकर उस चंचल विचलित मन को सही रास्ता दिखाता है। इस पूरे अनुभव को महसूस कराती है अमृता की ये कविता। मरुस्थल की लीला। एक गहरी शाम थी, वो रेत के टीले पर बैठी, अंधेरे का तागा उंगलियों पर लपेटती रही। फिर ऊपर आसमान पर कोई तारा चमका, उस रोशनी की किरण को वो देह पर मलती रही। दूर अंधेरे की घाटी से घंटियों की आवाज आई कि जैसे कोई डाची किसी सफर पर चली हो। वो टीले से उतर आई, घंटियों की दिशा में खड़ी हुई तो लगा कोई बात थी जो इस राह से गुजर रही हो। ये मरुस्थल की लीला चांद की कतरन ने देखी, और वो जो रेगिस्तान में खड़ी थी खड़ी सी रह गई। अंधेरी दिशा से जो डाची आई थी, वो घुटनों के भार उसके पैरों में बैठ गई। उसकी कांपती हथेली ने डाची के बदन को छुआ। डाची ने गर्दन हिलाई। तब नहीं जानती वो क्या था जो घंटियों में टुनका। किसी काल का स्मरण किसी ने हल्के से छाती पर छटका। वो डाची पर बैठी तब विरह का दुख उसके पैरों तले रेत सा झड़ने लगा। चांद की कतरन ने जादू बिछाया तो दूर कितने ही साए दौड़ते हाँफते नजर आए। और उसके कलेजे की तरह रेत का दिल भी डूबने लगा। अजब सोच उसके मस्तक से टकराई कि उत्तर की दिशा की तरफ झाड़ियों के पीछे पानी का छप्पर है, और उस प्यासी ने जब डाची को उस दिशा में मोड़ा तब वह बिन नकेल की डांची दक्षिण दिशा की तरफ भागी। रेत के गुबार उठते रहे जो कभी डाची के आगे भागते कभी पीछे से ऐसे आते जैसे डाची का निशान तलाश रहे हों। कोई कोई यूं दिखते कि उसे पहचाने हुए लगते। वह याद की मुट्ठी भरती तब मुट्ठी से रेत की तरह फिसल जाते। एक जगह लगा कि कोई कुछ रेत में दबा रहा है, और रेत की कब्र के पीछे वह खुद भी छुप रहा। दूर कोई और नजर आ रहा था, शायद कुछ बताना चाह रहा था जो रेत पर उंगलियों से जाने कितना कुछ लिख रहा। इतने में एक आफत सी बवंडर की तरह आई, झपट कर उसे डाची से उतारने लगी। तब डाची ने जोर से गर्दन हिलाई। एक घंटी चीख की तरह बजी और कहीं से कोई साया आया। उसने बाजुओं को आगे किया और डाची वाली को थाम लिया। सुन वो डाची वाली, कानों के पास से एक पवन सरकी और टूट रही आवाज में कहने लगी, ये कई जन्मों की स्मृतियां अगर किसी ने घंटियों से बांध दी, ये मरुस्थल की लीला कुछ खोल देगी। पर तुम्हारी ये बिन नकेल की डाची तुम्हें मरुस्थल में भटका देगी। यूं मरुस्थल में नहीं जाते, उस पवन ने कानों में कहा, पहले तो पर्वत पर जाते हैं, अंतर का दिया जगाते हैं और रूठे हुए फकीर को बनाते हैं। वह डाची को चंदन चराता है, आसमान का पानी पिलाता है और अपने हाथों से डाची को नकेल डालता है। यह चेतना की किरण थी जो उसके मस्तक को छुई। तब अपने वजूद की जमीन पर चलती पगडंडी पर चढ़ने लगी। ऊपर पहाड़ से महक आ रही थी जो उसके पीर का कुछ बता देती थी। और उसने देखा कि उसके पीछे पीछे उसकी बिन नकेल की डाची भी चली आ रही थी। उसके पीछे पीछे उसकी बिन नखेल की डाची भी चली आ रही थी। जन्म और मृत्यु के अंतर को नगण्य करते हुए एक अलौकिक गुफा तक ले जाती है अमृता की ये कविता। उस गुफा तक जाना और फिर वहां से वापसी की दास्तान सुनाती है। गुफा दर्शन, मौत और जन्म का फासला पांव के सामने बिछा देखा, पर देखा कि दूसरी तरफ गुफा थी, दूर कहीं, जाने कहां, शायद एक नहीं कई मौतों की दूरी पर। पर लगा कि वह मेरी चेतना को वहां वापस बुला रही थी। होशमंदी का मौसम बदल जाता, वह अंधेरे में गुम जाती, पर जब कभी याद की तीखी पवन बहती, हर मौत वाला स्याह बादल हिल जाता। फिर दूसरी तरफ कोई गुफा दिखती थी, फिर खुदा जाने वो कौन सी घड़ी थी और जाने किस फकीर की रहमत कि हर मौत के अंधेरे से गुजरकर मैं गुफा के द्वार तक पहुंची। जंगल के पत्ते उड़कर आए और बिछड़े हुए मित्र की तरह मिले। किसी झरने ने अंजुरी भरी, मेरे मस्तक पर पानी छिटका, चेतना आकारमय हुई और मेरा हाथ पकड़कर गुफा से निकली। अगर इबादत को इश्क कहा जा सके तो कह सकती हूं वह गुफा मेरे इश्क की दरगाह थी। अगर शिला को सेज कहा जा सके तो कह सकती हूं कि वहां पांच तत्वों का वसल हुआ था। और अगर काया के अंग पूजा के फूल होते हैं तो कह सकती हूं कि गुफा से फूलों की महक आ रही थी। अब याद नहीं आ रहा मैं कब दरगाह से लौटी थी, और अब कई मौतों के अंतराल पर खड़ी हूं, पर इतना जानती हूं कि चेतना का धागा हर मौत से गुजरकर मेरी जिंदगी लपेटता है, और आज भी इस मेरे वजूद का टुकड़ा दरगाह के दिए की तरह जलता है, और आज भी मेरे इस वजूद का टुकड़ा दरगाह के दिए की तरह जलता है। सूरज और उसकी किरणों का अलौकिक गुफा तक का सफर बताती हुई और अमृता की कल्पनाओं और सपनों की एक बेहद खूबसूरत मिसाल प्रस्तुत करती हुई है ये कविता गुफा चित्र। उस दिन सूर्य जब गुफा के द्वार पर आया तो कई रंग का शाही जामा पहन कर आया। जाने खुदा इस गुफा से वो कैसी कशिश उठी थी कि सूरज ने सिर झुकाया और गुफा के सकरे द्वार से निकल आया, और भीतर उस गुफा की दीवारों पर काया योग के चित्रों को देखता पत्थरशिला पर बैठ गया। चित्र प्राणमय हुए, हंसे और कहने लगे, काया से गुजरकर जो काया से पार चला जाता है, उसका कभी चित्र नहीं बनता। किरणों ने आंखें झपक कर दीवारों को देखा तो शिला समाधि का आसन बन गई और शक्तिगणों की मिट्टी सूरज को चित्रों के पार ले गई। फिर सुन्न हुए सूरज के बदन को जब वक्त ने हिलाया, तब अलौकिक से लौकिक होते हुए सूरज ने अपने बदन का शाही जामा उतार दिया और उसी शिला पर बैठकर गुफा की दीवारों को पहन लिया। मैं नहीं जानती ये किस काल की गाथा, पर इतना जानती हूं कि ऐसा वक्त आया था कि गुफा के चित्रों को देखते हुए सूरज दरवेश हुआ था, कि गुफा के चित्रों को देखते हुए सूरज दरवेश हुआ था। प्रेम से लबरेज ये कविता दो प्रेमियों के जन्मों के साथ को बेहद रोमानियत से दर्शाती है। अमृता की कविता पहचान। तुम मिले तो कई जन्म मेरी नब्ज में धड़के, फिर मेरी सांस ने तुम्हारी सांस का घूंट पिया, तब मस्तक में कई काल पलट गए। एक गुफा हुआ करती थी जहां मैं थी और एक योगी। योगी ने जब बाजुओं में लेकर मेरी सांसों को छुआ, तब अल्लाह कसम यही महक थी जो उसके होठों से आई थी। हाय एक कैसी माया कैसी लीला, कि शायद तुम ही कभी वो योगी थे, यह वही योगी है जो तुम्हारी सूरत में मेरे पास आया है, और वही मैं हूं और वही महक है और वही महक है। अपनी दिव्य दृष्टि से अमृता ने कुछ अद्भुत लीलाएं देखी भी और समझी भी। उनमें से एक का वर्णन है इस कविता में। ये कविता है शक्ति लीला। एक दिन जंगल में गई, तब देखा वहां पेंग पड़ी थी, दूर थी। सोचा यहां कौन झूलता होगा, पर कदम कदम पास गई तो देखा गणेश जी पेंग झूल रहे और झूले के हिचकोले में मुस्कुरा दिए। फिर जंगल में खेलती तीन परीजादियां भी आईं, जो गणेश के झूले को हिलौरा सा देती, हंसी टहकी और साथ ही पेड़ों के पत्ते झूम उठे। मैं हैरान हूं, कभी एक को देखती कभी दूसरी पर नजर जाती तो नजर उठती ही नहीं थी, और खुदा जाने कहां से आवाज आई, ये सरस्वती पार्वती और लक्ष्मी आज गणेश लीला खेल रही हैं। वो रासलीला वाले, तुम्हारी रासलीला तो जग जानता, मैंने तुम्हारा दीदार किया, तुम्हारी बांसुरी सुनी, तब हैरान नहीं थी, पर आज जो सखी लीला देखी और गणेश जी बांसुरी बजाते भी देखे, ये बांसुरी तो कहीं सुनी न जानी, पर शक्ति की लीला कौन जानता। सिर्फ लगा कि शायद मेरे मस्तक में सोई कोई नस जागी है, और कैसा दिन आया है कि मेरी महदूद सी हस्ती ने शक्ति की एक और लीला का आज दर्श दीदार पाया है। शक्ति की एक और लीला का आज दर्श दीदार पाया है। अपने साईं से इतनी सहजता से अपने मन की बात कह लेती थी अमृता। इस कविता में सुनते हैं, ओ साईं, ओ साईं, तेरे चरखे ने आज कातने वाले को कात लिया है। हर एक सूत डलिया में डाला, ना कोई गया ना कोई आया। हाय अल्लाह, आज क्या बनी है इस पुनी कातने वाली को। ता किसी ने बंद किया ना खोला, सुस्त पड़े हैं रंगीन पीढ़े। देख अटेरन बोराया हुआ सा ढूंढता है कातने वाली को। ना किसी ने दी ना किसी ने मांगी, दूसरे के कानों में आवाज ना गई। आसमान हंसकर देखने लगा इस छप्पर पर छत डालने वाली को। ओ साईं, तेरे चरखे ने आज कात लिया कातने वाली को। तेरे चरखे ने आज कात लिया कातने वाली को। प्रेमिका की रूह किस तरह तड़पती है अपने प्रेमी से मिलने के लिए, और कैसी कैसी उलझनों से गुजरती है। आसमान और बादलों का रूप धर बड़ी खूबसूरती से उस तड़प को उकेरा है अमृता की कविता ने। मुलाकात। मैंने पल भर के लिए आसमान को मिलना था, पर घबराई हुई खड़ी थी, बादलों की भीड़ से कैसे गुजरूंगी। कई बादल स्याह काले थे, खुदा जाने कब के और किन संस्कारों के। कई बादल गरजते दिखे जैसे वे नसीब होते हैं राहगीरों के। कई बादल शूकते चक्कर खाते, खंडहरों के खोल से उठते खतरे जैसे। कई बादल उठते और गिरते थे कुछ पूर्वजों की फटी पत्रियों जैसे। कई बादल घूरते और घिरते दिखे कि सारा आसमान उनकी मुट्ठी में हो, और जो कोई भी इस राह पर आए वह जर खरीद गुलाम की तरह आए। मैं नहीं जानती थी कि क्या और किसे कहूं। काया के अंदर एक आसमान होता है, और उसकी मोहब्बत का तकाजा वह कायनाती आसमान का दीदार मांगता है। पर बादलों की भीड़ का ये जो फिक्र था, ये फिक्र उसका नहीं मेरा था। उसने तो इश्क की कनी खा ली थी, और एक दरवेश की मानन उसने मेरे श्वासों की धुनी रमा ली थी। मैंने उसके पास बैठकर धुनी की आग छेड़ी, कहा कि तेरी और मेरी बातें, पर ये बातें बादलों का हुजूम सुनेगा तब बताइयोगी मेरा क्या बनेगा। वो हंसा, नीली और आसमानी हंसी, कहने लगा, ये धुएं के अंबार होते हैं, घिरना जानते, गरजना भी जानते, निगाहों को वर्जना भी जानते, पर इनके तेवर तारों में नहीं उगते और नीले आसमान की देही पर इल्जाम नहीं लगते। मैंने फिर कहा कि तुम्हें सीने से लपेटकर मैं बादलों की भीड़ से कैसे गुजरूंगी और चक्कर खाते बादलों से कैसे रास्ता मांगूंगी। खुदा जाने उसने कैसी तलब पी थी। बिजली की लकीर की तरह उसने मुझे देखा और कहा, तुम किसी से रास्ता ना मांगना और किसी भी दीवार को हाथ ना लगाना, ना ही घबराना, ना किसी के बहलावे में आना। बादलों की भीड़ में से तुम पवन की तरह गुजर जाना, बादलों की भीड़ में से तुम पवन की तरह गुजर जाना। अभी आपने सुनी शीर्षक मुलाकात के अंतर्गत समाहित मैं तुम्हें फिर मिलूंगी की कुछ कविताएं गाथा ऐप पे पल्लवी गर्ग की आवाज में।